स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों हम पहला शमूएल नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस अध्ययन से आप आत्मिक लाभ अवश्य प्राप्त कर रहे होंगे। परमेश्वर से प्राप्त की गई आशीषों को हमसे बांटिए और लगातार प्रार्थना में रहकर सुनते रहिए सत्य वचन।
नाम खुदा का लेता रहूंगा, सिजदे का अंजाम होगी हिफाजत दुश्मनों से, ऐसा पाक है यीशु का नाम, ऐसा पाक है यीशु का नाम। नाम खुदा का लेता रहूंगा, देखूंगा सिजदे का अंजाम होगी हिफाजत।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको फिर से एक बार मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूं और आशा करता हूं कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं। मैं अपने नए श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं जो पहली बार आज हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम शमूएल नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं जो बाइबल की पुस्तक है, और पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि एल्काना की दो पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना था और दूसरी का नाम पनिन्ना था, और इन दोनों पत्नियों में परस्पर मेल नहीं था। पनिन्ना हन्ना से ईर्ष्या करती थी क्योंकि एल्काना उससे अधिक प्रेम रखता था, वह उसकी निंदा भी बहुत करती थी। अतः हन्ना मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर से आत्मलीन होकर प्रार्थना करती है, और महायाजक एली सोचता है कि वह नशे में चूर है, परंतु हन्ना उसे अपने मन की व्याथा सुनाती है तो एली उसे पुत्र प्राप्ति का वर या आशीर्वाद देता है। हन्ना अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पुत्र प्राप्त करती है, पर उसे परमेश्वर का नाजीर करके मंदिर में सेवा के लिए अर्पित कर देती है। प्रिय मित्रों, आज हम अध्याय 2 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे और इसका विषय है हन्ना की प्रार्थना, एली के दुष्ट पुत्र, मंदिर में शमूएल और एली के पुत्रों को दंड। हम हन्ना की आभार व्यक्ति की प्रार्थना एक प्रकार से भविष्यवाणी के रूप में देखते हैं। वह पहली बार मसीह का उल्लेख करती है। एली के पुत्र दुष्ट थे और याजक वृत्ति के लिए सर्वथा अयोग्य थे। एक अज्ञात भविष्यद्वक्ता एली को चेतावनी देता है कि उसका वंश समाप्त हो जाएगा और परमेश्वर उसके स्थान पर एक विश्वास योग्य याजक नियुक्त करेगा। तो हम देखते हैं हन्ना की भविष्यवाणी की प्रार्थना, यह धर्मशास्त्र में निहित महान प्रार्थनाओं में से एक है। तो आइए हम पढ़ते हैं पहला शमूएल की पुस्तक 2 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, और हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूं। यहां पर ध्यान दे, सिंह शक्ति का प्रतीक है जिसका सहारा लिया जा सकता है। हन्ना ने कहा मेरा सिंह, अर्थात उसकी शक्ति, परंतु उसके कहने का अभिप्राय था प्रभु में उसकी शक्ति। उसके आनंद का कारण था कि परमेश्वर ने उसे एक पुत्र दिया है। वह अपने बांझपन पर ठड्ढा करने वालों पर जयवंत हुई थी। वह अपने उद्धार पर मगन है, यह उसका वर्तमान उद्धार था। मित्रों, उद्धार के 3 काल हैं। पहला, हमने उद्धार पा लिया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 उसके 24 पद में लिखा है, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, अर्थात हो चुका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह की मृत्यु के द्वारा पाप को दोष से मुक्त कर दिया है। यह धर्मी होना है जो भूतकाल की सी बात है। दूसरा है, परमेश्वर ने हमें पाप के प्रदूषण से मुक्ति दिलाई है। यह वर्तमान की बात है। हमारा उद्धार हो गया है, या शरीर की दुर्बलता से, शरीरों के पापों से, मन के दोषों से और इच्छा के कार्यों से मुक्ति है। यही वह वर्तमान उद्धार है जिसका उल्लेख हन्ना कर रही है। यह पवित्रीकरण है जो वर्तमान अवस्था है। और तब तीसरी बात है, अंत में मृत्यु से मुक्ति, शारीरिक मृत्यु नहीं, आत्मिक मृत्यु से मुक्ति। पहला यूहन्ना की पत्री 3:2 में लिखा है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। जी हाँ, यह भावी उद्धार है। हम उद्धार पाएंगे। यह महिमान्वित है जो भविष्यत काल में है। हम उद्धार पा चुके हैं, हम उद्धार पा रहे हैं और हम उद्धार पाएंगे। हन्ना अपने उद्धार में आनंदित थी। हम योना नबी की पुस्तक 2:9 में हम पाते हैं, जहां पर योना कहता है कि उद्धार परमेश्वर का है। भजनकार बार बार कहता है कि उद्धार परमेश्वर का है। उद्धार का महान सत्य यही है कि यह परमेश्वर के अनुग्रह से है। कहने का अर्थ यह है कि हम उसके अनुग्रह के द्वारा निर्मोल धार्मिकता पाते हैं, अर्थात बिना किसी कीमत को चुकाए। परमेश्वर ने हमें उद्धार के योग्य कुछ भी नहीं पाया है। उसने इसकी अभिव्यक्ति स्वयं में देखी और वह हमसे प्रेम करता है। पहला सामुएल के पुस्तक 2:2 में हम पढ़ते हैं, यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं। मित्रों, पुराने नियम में परमेश्वर को चट्टान कहा जाता था। नए नियम में पहला पत्रस 2:6 में मसीह को कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर कहा गया है। और मत्ती रचित सुसमाचार 16:18 में यीशु स्वयं के बारे में कहता है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। जिस चट्टान से हन्ना आश्वस्त थी, उसी चट्टान पर आज हम आश्वस्त हैं। हमारे परमेश्वर जैसी दूसरी चट्टान नहीं है। पहला सामुएल के पुस्तक 2:3 में लिखा है, फूल कर अहंकार की और बातें मत करो, और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से न निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों का तौलने वाला है। जी हाँ, परमेश्वर से प्रार्थना करते समय हमें अति सावधान रहना है मेरे मित्रों, कि हमारा घमंड हमें ठोकर न खिलाए। हमें अपनी दुर्बलताओं और अपनी अक्षमताओं पर ध्यान देना है। अपनी अयोग्यता तथा उस सत्य का बोध होना है कि परमेश्वर पर हमारा कोई दावा नहीं है। कभी कभी हम मनुष्यों से यह सुनते हैं, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी। सच कहूं तो वह क्यों सुनेगा? आपका उस पर कोई अधिकार ही नहीं है। यदि आपने मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है तो आपको उस पर अधिकार है और आप उसके पास आ सकते हैं। आप मसीह के नाम में उसके पास आ सकते हैं। उसकी संतान होने के कारण हमें यीशु के अधिकार और दावे प्राप्त हैं। परंतु हमें सदा स्मरण रखना है कि हमारी प्रार्थनाएं उसकी इच्छा के विपरीत ना हो। पहला सामुएल की पुस्तक 2:4-6 में हम पढ़ते हैं, शूरवीरों के धनुष टूट गए और ठोकर खाने वालों की कटी में बल का फेंटा कसा गया। जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी। जो भूखे थे वे फिर ऐसे न रहे, वरन जो बांझ थे उसके साथ हुए, और अनेक बालकों की माता घुलती जाती है। यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता और उससे निकालता भी है। इस संपूर्ण गद्यांश का मुख्य विचार है कि परमेश्वर जीवन दाता है। अय्यूब ने कहा था, अय्यूब की पुस्तक 1:21 में, यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। जी हाँ, केवल परमेश्वर ही है जिसके पास जीवन देने का सामर्थ्य है और उसे लेने का भी अधिकार है। हमें अधिकार नहीं कि जान लें। अब तक तो यह अधिकार केवल परमेश्वर का ही है। मेरी बात का विश्वास करें, प्रेरितों के काम 5 में हनन्या और सफीरा की जान लेने का दोष परमेश्वर अपने ऊपर ले लेगा, यदि आप ऐसा ही कहना चाहें तब। वह उस सत्य के लिए क्षमा नहीं मांगेगा कि वह दुष्टों का न्याय करने की इच्छा रखता है। वे मृत्यु में प्रवेश करके परमेश्वर से अलग हो जाएंगे। परमेश्वर अपने काम के लिए क्षमा नहीं मांगता है। क्यों? क्योंकि यह जगत उसी का है, हम उसकी रचना है। वह जगत को अपनी रीति से चलाता है, ना कि हमारी रीति से। मित्रों, बहुत समय तो नहीं हुआ है, मैं कॉलेज के एक विद्यार्थी से बात कर रहा था। उसने मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया था, परंतु वह बहुत सी बातों को स्वीकार नहीं कर रहा था। मैंने उससे कहा, यदि आपको परमेश्वर की उद्धार योजना का काम पसंद नहीं और आपको उसके काम पसंद नहीं है, तो आप कहीं जाकर अपना जगत अलग से बना लें, अपने नियम निर्धारित करें और अपनी इच्छा से उसे चलाएं। परंतु जब तक आप परमेश्वर के इस जगत में हैं, तब तक आपको उसकी इच्छा के अनुसार ही चलना होगा। यह एक अति उत्तम बात है कि हम उसके सामने झुक सकते हैं और उसकी आशीषों के अधीन आ सकते हैं, यदि हम उसकी रीति के अनुसार चले तब। और आज हमारे बहुत सारे जवानों के लिए यही एक समस्या का विषय है कि वे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलना चाहते हैं और चाहते हैं कि उन्हें आशीष प्राप्त हो, जो कि अनहोना है। हम पहला शमूएल 2:7 में पढ़ते हैं, यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वही नीचा करता है और ऊंचा भी करता है। इस पद से हमारे मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता है, ऐसा क्यों है कि कुछ लोग धनवान हैं और कुछ कंगाल? मैं स्वयं नहीं समझ पाता हूं कि परमेश्वर ने कुछ को धनवान और कुछ को आवश्यकता ग्रस्त रखा है। मैं सोचता हूं कि यदि मेरे हाथ में हो तो मैं धन का बंटवारा अधिक उचित रीति से कर सकता हूं। मैं सच कहता हूं, परंतु आप जानते हैं, उसने यह काम मेरे लिए नहीं रखा है, यह उसका काम है और एक दिन वह इस प्रश्न का उत्तर भी देगा। मैं प्रतीक्षा करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि उसके पास इसका उत्तर अवश्य है। पहला शमूएल 2:8-9 में हम आगे पढ़ते हैं, वह कंगाल को धूलि में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए, क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है। वह अपने भक्तों के पांव को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल न होगा। जी हाँ, मनुष्य अपने प्रयासों, सामर्थ और बल से परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। आप और मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य जो करते हैं, वही देखा जाता है। हमें उस पर निर्भर रहना और उस पर आश्वासन रखना सीखना है। पहला शमूएल 2:10 में हम पढ़ते हैं, जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे, वह उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा। यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा और अपने अभिषिक्त के सिंह को ऊंचा करेगा। मेरे प्रिय मित्रों, यह धर्मशास्त्र के महान पदों में से एक है और इसमें मसीह का नाम आया है। इब्रानी भाषा में अभिषिक्त का अनुवाद मसीह है, यूनानी में इसका अनुवाद ख्रिस्त है। यह प्रभु यीशु का नाम है। परमेश्वर इसराइल में राज्य की स्थापना करने के लिए तैयारी कर रहा है, क्योंकि इसराइल ने परमेश्वर का राजा होना अस्वीकार किया है, इसलिए वहां वह राजा नियुक्त करेगा। पहला शमूएल 2:11 में हम पढ़ते हैं, तब एलकाना रामा को अपने घर चला गया और वह बालक एली याजक के सामने यहोवा की सेवा टहल करने लगा। मित्रों, सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि शमूएल सुरक्षित एवं आश्रय के स्थान में रख दिया गया है। यद्यपि मिलाप वाले तंबू को ऐसा ही स्थान होना था, परंतु दुर्भाग्य से वह ऐसा स्थान नहीं था। हम आगे देखते हैं एली के दुष्ट पुत्र। पहला शमूएल के पुस्तक 2:12 में लिखा है, एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को न पहचाना। ध्यान दे, एली के पुत्र लुच्चे थे, अर्थात शैतान की संतान थे। उन्होंने उद्धार नहीं पाया था, वे महायाजक के पुत्र थे और मिलाप वाले तंबू में सेवा करते थे। मेरे मित्रों, अनेक विश्वासी अपने संतान को मसीही स्कूलों में भेजकर बड़ी शांति पाते हैं। कृपया मेरी बात को गलत न समझे, मैं तो मसीही स्कूलों के लिए परमेश्वर का आभारी हूँ। समस्या तो यह है कि वह बालक अब एक अच्छे स्थान में है, तो उन्होंने उसके लिए प्रार्थना करना छोड़ दिया। वह बालक एक ऐसे स्थान में है जो कल्पना से परे खतरनाक स्थान है। कुछ माता पिता अपने पुत्र को अच्छी कलीसिया में देख सुरक्षा का आभास करते हैं। मेरे मित्रों, शैतान वहां जाता है, वह ऐसे उत्तम स्थानों में जाता है। आपको स्मरण होगा कि शैतान उस कक्ष में भी था जहां मसीह यीशु ने अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोजन खाया था। वह कक्ष यरूशलेम का सबसे अधिक खतरनाक कक्ष था, क्योंकि शैतान वहां पर था। हमें स्मरण रखना है कि एक बालक जो अच्छी कलीसिया में है या अच्छे स्कूल में जाता है, उसे अब भी प्रार्थना की आवश्यकता है। वह एक खतरनाक स्थान में हो सकता है। यहाँ पर यह छोटा शमूएल एक खतरनाक स्थान में था, परंतु उसकी माता उसके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करती थी। आप निश्चय जानिए कि हन्ना अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती थी। पहला शमूएल 2 अध्याय उसके 13 से 16 पद में हम पढ़ते हैं। और याजकों की रीति लोगों के साथ यह थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था, तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक त्रिशूली कांटा हाथ में लिए हुए आकर उसे कड़ाही व हांडी व हांडे व तसले के भीतर डालता था, और जितना मांस कांटे में लग जाता था उतना याजक आप लेता था। यूं ही वे शीलों में सारे इसराइलियों से क्या करते थे जो वहां आते थे, और चर्बी जलाने से पहले ही याजक का सेवक आकर मेलबलि चढ़ाने वालों से कहता था कि कबाब के लिए याजक को मांस दे, वह तुझसे पका हुआ नहीं कच्चा ही मांस लेगा। और जब कोई उससे कहता कि निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, तब जितना तेरा जी चाहे उतना ले लेना, तब वह कहता था नहीं अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा। मेरे मित्रों, वे परमेश्वर के काम में पूर्ण रूप से अनिष्ट थे। वे सबसे पहला धर्म का ठग व्यापार कर रहे थे, जबकि यह परमेश्वर के दृष्टि में गलत और बुरा था। तब हम आगे पढ़ते हैं पहला शमूएल 2 अध्याय के 17 पद में, इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा के दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। अब ध्यान दीजिए कि उनकी अनिष्ठा के कारण अनेक जन परमेश्वर से दूर हो गए थे। इसराइलियों ने देखा कि एली के पुत्र मिलाप वाले तंबू में कैसा अन्याय करते थे। परमेश्वर के निकट आने की अपेक्षा वे परमेश्वर से दूर हो रहे थे। मेरे मित्रों, हमें अपने जीवन शैली और अपनी कलीसियाई व्यवस्था के बारे में अति सावधान रहना है। कलीसिया में पाप के प्रति आंखें बंद करने और पाप पर पर्दा डालने से मनुष्य परमेश्वर से दूर होने लगते हैं। आज हमारी युवा पीढ़ी की यही शिकायत है। हाल ही में मुझे इन युवाओं को मसीह को ग्रहण करता देखने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने उनसे बातें की और उन्हें काम करते देखा। वे सुव्यवस्थित कलीसिया के पक्ष में नहीं है, क्योंकि वहां केवल दिखावा है। इससे मुझे चिंता होती है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह है जैसे एली के युग में मिलाप वाले तंबू में था। हम आगे देखते हैं मिलाप वाले तंबू में शमूएल। पहला शमूएल की पुस्तक 2 अध्याय उसके 18 और 19 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु शमूएल जो बालक था सनी का एपोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा किया करता था, और उसकी माता प्रति वर्ष उसके लिए एक छोटा सा बागा बनाकर जब अपने पति के संग प्रति वर्ष की मेलबलि चढ़ाने आती थी, तब बागे को उसके पास लाया करती थी। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि शमूएल एली के दुष्ट पुत्रों के प्रभाव में बढ़ रहा था, परंतु उसकी माता उसे भूली नहीं थी। वह अपने बालक से प्रेम करती थी। उसने उसे परमेश्वर की सेवा में अर्पित करने का प्रण किया था, और उसने अपना प्रण पूरा भी किया। वह प्रति वर्ष उसके लिए बागा बनाकर लाती थी। इससे पता चलता है कि वह अपने बेटे शमूएल से कितना अधिक प्यार करती थी। मेरे विचार में मेरी पत्नी और मेरे लिए सबसे बड़े आनंद की बात है कि हम अपने बच्चों के लिए कपड़ा खरीदें। इससे बढ़कर संतोष और कहीं नहीं है। हन्ना को यह देखकर मेरा मन उसके लिए गदगद हो जाता है। पहला शमूएल की पुस्तक 2 अध्याय उसके 20 और 21 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और एली ने एलकाना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा इस अर्पण किए हुए बालक की संति जो उसको अर्पण किया गया है तुझको इस पत्नी से वंश दे। तब वे अपने यहाँ चले गए, और यहोवा ने हन्ना की सुधि ली, और वह गर्भवती हुई, और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुए, और शमूएल बालक यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर हन्ना पर अनुग्रहकारी रहा। उसके पास 5 पुत्र और पुत्रियां और थी, परंतु वह शमूएल को नहीं भूली थी। उसने प्रतिवर्ष उसके लिए एक बागा बनाया और मिलाप वाले तंबू में जो बुरा वातावरण होते हुए भी शमूएल परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ता गया। हम एली के पुत्रों के दंड के विषय में देखते हैं। पहला शमूएल 2 अध्याय उसके 22 पद में लिखा है, और एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि मेरे पुत्र सारे इसराइल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। अब ध्यान दें, एली पाप छिपाने वाला पिता था। उसने अपने पुत्रों के पापों को अनदेखा किया, उनकी घोर अनैतिकता पर ध्यान नहीं दिया। मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाले स्त्रियों के संग भी वे कुकर्म करते थे। आज नई नैतिकता की बहुत अधिक चर्चा है। मेरे विचार में एली के पुत्रों ने इस नई नैतिकता में हम सबको पीछे छोड़ दिया है, और सच तो यह है कि यह नई नैतिकता उनके समय में भी नई नहीं थी। यह तो जल प्रलय के युग की थी। हम पहला शमूएल 2 अध्याय के 23 पद में पढ़ते हैं, तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं तो इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुना करता हूं। तब हम देखते हैं कि एली के पुत्रों के काम इसराइल में चर्चा का विषय थे। एली ने केवल उन्हें चिता कर छोड़ दिया। हम आगे पढ़ते हैं पहला शमूएल 2 अध्याय के 24 पद में, हे मेरे बेटों ऐसा न करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं है। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो। यहां पर फिर देखें, जन साधारण याजक का काम करने लगे थे और एली के पुत्र इसराइल से पाप करवा रहे थे। कठोर कदम उठाने की अपेक्षा एली ने उन्हें चिता कर छोड़ दिया। वह उनके पापों पर पर्दा डालता था, जैसा कि आज बहुत सारे प्रभु के दास या विश्वासी अपने बच्चों की गलतियों को छुपाते हैं और इस तरीके से वह उन्हें बढ़ावा देते हैं और इसका अंत बहुत बुरा होता है। पहला शमूएल 2 अध्याय उसके 25 और 26 पद में पढ़ते हैं, यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा? तो भी उन्होंने अपने पिता की बात ना मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न थे। मेरे प्रियो, इस अधर्मी वातावरण में शमूएल परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ रहा था। वह परमेश्वर को अर्पित था और उसके पीछे उसकी माता की चिंता और प्रार्थनाएं थी। परमेश्वर उसे काम में ले रहा था। हम पहला शमूएल 2 अध्याय उसके 27 से 29 पद में पढ़ते हैं, और परमेश्वर का एक जन एली के पास जाकर उससे कहने लगा, यहोवा यूं कहता है कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फिरौन के घराने के वश में था, तब क्या मैं उस पर निश्चय प्रकट न हुआ था? और क्या मैंने उसे इसराइल के सब गोत्रों में इसलिए चुन नहीं लिया था कि मेरा याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ावे चढ़ाए और धूप जलाए और मेरे सामने एपोद पहना करे? और क्या मैंने तेरे मूल पुरुष के घराने को इसराइलियों के कुल हव्य न दिए थे? इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि जिनको मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रौंदते हो? और तू क्यों अपने पुत्रों का आदर मेरे आदर से अधिक करता है कि तुम लोग मेरी इसराइली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंटे खा खा के मोटे हो जाओ? मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर ने वृद्ध एली के पास एक भविष्यद्वक्ता को भेजा, जिसने उसे कहा कि परमेश्वर उसे महायाजक पद से समाप्त कर देगा। परमेश्वर याजकों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जाएगा। अब परमेश्वर एक याजक भविष्यद्वक्ता तैयार कर रहा है, वह शमूएल है। वह परमेश्वर की सेवा करेगा और उसका पद भविष्यद्वक्ता का होगा। तब हम आगे पढ़ते हैं पहला शमूएल 2 अध्याय के 30 पद में, इसलिए इसराइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। मेरे प्रिय मित्रों, हमें परमेश्वर को प्रतिष्ठित करने के बारे में अत्यधिक सावधान रहना है। भजन संहिता 107 उसके 1 और 2 में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। मित्रों, आज भी परमेश्वर के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें। पहला सामुएल 2 अध्याय उसके 31 से 34 पद में आगे हम पढ़ते हैं, सुन वे दिन आते हैं कि मैं तेरा भुजबल और तेरे मूल पुरुष के घराने का भुजबल ऐसा तोड़ डालूंगा कि तेरे घराने में कोई बूढ़ा होने ना पाएगा। इसराइल का कितना ही कल्याण क्यों ना हो तो भी तुझे मेरे धाम का दुख देख पड़ेगा और तेरे घराने में कोई कभी बूढ़ा ना होने पाएगा। मैं तेरे कुल के सब किसी से तो अपनी वेदी की सेवा न छीनूंगा, परंतु तो भी तेरी आंखें देखती रह जाएंगी और तेरा मन शोकित होगा और तेरे घर की बढ़ती सब अपनी पूरी जवानी ही में मर मिटेंगे। और मेरी इस बात का चिन्ह वह विपत्ति होगी जो होपनी और पिनहास नाम तेरे दोनों पुत्रों पर पड़ेगी, अर्थात वे दोनों के दोनों एक ही दिन मर जाएंगे। मेरे मित्रों, इन पदों में उच्चारित प्रत्येक भविष्यवाणी पूरी हुई। परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते हुए हम इन बातों का पूरा होना भी देखेंगे। पहला शमूएल 2 अध्याय के 35 पद में लिखा हुआ है, और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा, और मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा, और वह मेरे अभिषिक्त के आगे आगे सब दिन चला फिरा करेगा। यह पद किसके बारे में कह रहा है? प्रभु मसीह के बारे में। आपको स्मरण होगा कि हन्ना की प्रार्थना में उसे आने वाला राजा मसीह कहा गया है। मूसा ने मसीह को नबी कहा था और अब पहला शमूएल की पुस्तक में उसे याजक कहा गया है। प्रभु यीशु मसीह भविष्यद्वक्ता, याजक और राजा है। वही एकमात्र है जिसने इन सब पदों को निभाया है। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक आशीषों को प्राप्त किया है। जिस प्रकार हन्ना ने अपने बेटे के लिए प्रार्थना किया, मेरी माता और बहनों, आप भी अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें ताकि आपके बेटे और बेटियां परमेश्वर की निकटता में रह सके। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
पाप से ही तू डर के रहना, पाप से ही तू डर के रहना, दुश्मनों को गले से दुश्मनों को गले से लगा ले। अपने जीवन को।